ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। सरकार ने आगामी जनगणना में जाति की गणना को सम्मिलित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की राजनीतिक कार्य समिति ने यह फैसला किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि जनगणना केंद्र का विषय है।
कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए।
श्री वैष्णव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी सरकारों ने सदैव जाति जनगणना का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जाति जनगणना के मामले पर मंत्रिमंडल में विचार करने और इस बारे में मंत्रियों का एक समूह बनाने का लोकसभा में आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना की सिफारिश की थी, इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना की जगह केवल सर्वेक्षण कराने का फैसला किया। सरकार ने शिलांग से सिलचर तक नए राजमार्ग के निर्माण को स्वीकृति दी। इस पर 22,864 करोड़ रुपए की लागत आएगी। श्री वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगी। मंत्रिमंडल ने गन्ना पेराई मौसम 2025-26 के लिए 355 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य तय करने को भी स्वीकृति दी। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांतो मजुमदार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत बहुविषयक शिक्षा अनुसंधान विश्वविद्यालयों की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। डॉ. मजुमदार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को सशक्त बनाती है, संस्थानों को आधुनिकीकरण करती है और भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक नवाचार के साथ जोड़ती है। भारतीय सेना के सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO ने पाकिस्तानी DGMO से बात की है। उन्होंने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान सेना के किसी भी अकारण उल्लंघन के विरुद्ध चेतावनी दी है। रक्षा सूत्रों के अनुसार दोनों DGMO ने कल सैन्य हॉटलाइन के माध्यम से बातचीत की। भारतीय अधिकारी ने पाकिस्तान के अकारण संघर्ष विराम उल्लंघन का मामला उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट सम्मेलन वेव्स 2025 का कल मुंबई में उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में होगा। 4 दिन के इस सम्मेलन का मुख्य विषय है रचनाकारों को और देशों को साथ में जोड़ना। इसमें विश्वभर के रचनाकार, स्टार्टअप, उद्योग प्रमुख और नीति निर्माता शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए चलते हैं जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में मौजूद हमारी संवाददाता अंकिता आपटे से। अंकिता, वहाँ क्या तैयारियां हैं?
जी लवलीन जी, तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही है और इस 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 90 देशों से 10,000 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारत पहली बार ग्लोबल मीडिया डायलॉग की मेजबानी भी कर रहा है, जिसमें 25 देशों के मंत्री शामिल होंगे। और इस सम्मेलन का जो और एक अट्रैक्शन जिसे हम कह सकते हैं वो है वेव्स बाजार, जो 60,000 से ज्यादा खरीदार, 5,000 विक्रेताओं और 2,000 प्रोजेक्ट्स के साथ एक वैश्विक ई मार्केट प्लेस होगा, जो व्यापार और नेटवर्किंग के अवसर बढ़ाएगा। तो तैयारियां बड़ी धूमधाम से चल रही है लवलीन जी।
धन्यवाद अंकिता इस जानकारी के लिए। अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर आज उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही चारधाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज विशाखापत्तनम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में चेन्नई सुपर किंग्स 4 अंक के साथ 10वें नंबर पर है, जबकि पंजाब किंग्स 11 अंक के साथ 5वें नंबर पर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को कर्नाटक के हुबली में एक नाबालिग लड़की के कथित अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी की मौत की मीडिया रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया है। आयोग ने 4 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।